स्वागत है आपका दिन भर में। आज 28 दिसंबर दिन बुधवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। सपा प्रमुख मुलायम सिंह ने आगामी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए जारी की 325 उम्मीदवारों की सूची।
चार पे तो सभी टिकट हैं, लेकिन दे पाएंगे 403 और जो बच जाएंगे उनको कहीं ना कहीं हम सम्मानित करेंगे।
केंद्रीय कैबिनेट ने 500 और 1000 के पुराने नोटों संबंधी अध्यादेश को दी मंजूरी। सीमा से ज्यादा पुराने नोट रखने पर जाना पड़ सकता है जेल। बीबीसी के वर्षांत कार्यक्रमों की कड़ी में आज सुनिए प्रख्यात सितार वादक पंडित रविशंकर पर प्रस्तुति, जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को दुनिया भर में पहचान दिलाई।
जब जॉर्ज हैरिसन 66 में हमारा शागिर्द हो गया, उस समय एक हलचल मच गई। दैट वाज हिज सेकंड पीरियड।
लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार सुशीला सिंह से। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आज 325 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की। इस सूची में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कई करीबी लोगों के टिकट काट दिए गए हैं। वहीं कुछ ऐसे लोगों को सूची में शामिल किया गया है जिनके नाम पर अखिलेश यादव अभी तक आपत्ति जताते रहे हैं। मुलायम सिंह ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी किसी भी पार्टी से चुनाव में गठबंधन नहीं करेगी। रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि बचाव टीम ने काला सागर में क्रैश हुए सेना के विमान से दूसरा फ्लाइट रिकॉर्डर बरामद कर लिया है। इस दुर्घटना में 92 लोगों की मौत हो गई थी। इससे पहले मंगलवार को एक ब्लैक बॉक्स मिला था और मॉस्को में अब इसकी जांच की जा रही है। मंत्रालय का कहना है कि दुर्घटना स्थल से बरामद किए गए शवों को उनकी पहचान के लिए मॉस्को ले जाया जा रहा है। ये विमान उड़ान के बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हालांकि कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। रूस के परिवहन मंत्री मैक्सिम सोकोलोव का कहना था, अभी किसी निर्णय पर पहुंचना जल्दबाजी होगा। ये सही बात है कि हम सभी पहलू को देख रहे हैं। ब्लैक बॉक्स की जांच के बाद उन्हें सारी जानकारी मिल पाएगी। ये थे परिवहन मंत्री मैक्सिम सोकोलोव के शब्द। रूस की डोपिंग निरोधी एजेंसी का कहना है कि उनकी कार्यकारी महानिदेशक एना एंटेसेलियोविच ने के खेल में डोपिंग पर दिए गए बयान को गलत तरीके और संदर्भ से बाहर पेश किया गया है। न्यूयॉर्क टाइम को दिए गए एक साक्षात्कार में उनके हवाले से कहा गया था कि रूस में सैकड़ों एथलीट्स के खिलाफ डोपिंग अभियान चल रहा है। कार्यकारी महानिदेशक ने इसे एक षड्यंत्र बताया है। फेसबुक पर उन्होंने लिखा है कि उनके शब्दों को गलत समझा गया है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। तुर्की का कहना है कि उसने सीरिया में संघर्ष विराम को लेकर एक सहमति तैयार कर ली है। तुर्की के विदेश मंत्री ने मीडिया में आ रही रिपोर्टों की पुष्टि की थी, जिसमें कहा गया था कि सीरिया में संघर्ष विराम को लेकर दिए गए प्रस्ताव पर अंकारा रूस के साथ सहमत हो गया है। तुर्की की समाचार एजेंसी का कहना है कि ये संघर्ष विराम मध्यरात्रि से शुरू हो जाएगा। तुर्की के विदेश मंत्री ने दोहराया कि राष्ट्रपति असद के लिए राजनीतिक स्थानांतरण में शामिल होना असंभव है। रूस और तुर्की सीरिया में विपक्षी पक्षों का समर्थन कर रही है, लेकिन हाल ही में इस संघर्ष का समाधान निकालने के लिए एक साथ दोनों देश काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने आज बिहार में नोटबंदी के खिलाफ धरना दिया। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कहा कि देश में नोटबंदी और नसबंदी सफल नहीं रहे हैं। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी संदेश दिया। राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कहा,
अब मित्रों कहने का जमाना गया, चौराहा को आप ही बताइए। हम नहीं चाहते कि बिहार में हम चौराहा आपके लिए तय कर दें। आप ही खुद चुन लीजिए, देश में या गुजरात में या दिल्ली में अच्छा रहेगा कि दिल्ली में ही चुन लीजिए। वहाँ केजरीवाल का है राजपाल, तो आप चुन लीजिए। आपने खुद कहा था, लालू नहीं बोल रहा, आपके मालिक को बचन भंग मत बनो। आपको कायम रहना चाहिए, देश का प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री इंस्टीट्यूशन हुआ करता है, और इसको हल्के से मत लीजिए, हवाबाजी में मत लीजिए।
ये थे राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद के शब्द। बहरीन की एक अदालत ने देश के एक प्रमुख कार्यकर्ता नबील रजब को जमानत पर रिहा कर दिया है। इस मामले पर ट्वीट्स की श्रृंखलाओं के बाद लंबी सुनवाई चली, जिसके बाद उन्हें रिहा करने का आदेश दिया गया। उन्हें जून महीने में पकड़ा गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स और ले मॉन में छपी चिट्ठियों को लेकर भी उन पर जांच जारी है। ये चिट्ठियां उस समय प्रकाशित हुई थी जब वे हिरासत में थे। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिनभर रेडियो के साथ साथ bbcहिंदी.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। समाजवादी पार्टी में पिछले दिनों मचे घमासान और पारिवारिक विवाद के बीच आज पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 325 उम्मीदवारों की सूची जारी की। इस सूची में 53 मौजूदा विधायकों और मंत्रियों के नाम नहीं हैं। 78 बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा जल्द की जाएगी। मुलायम सिंह ने इस सूची में अब किसी भी तरह के बदलाव की संभावना से इनकार किया है। लखनऊ से समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट।
समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव की ओर से 175 सीटों पर औपचारिक घोषणा और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की 403 सीटों की अनौपचारिक लिस्ट के बाद आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने 325 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी।
आज तक 325 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जा रहे हैं, जिसमें 176 सीटें वो हैं जहां पर वर्तमान में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, और 149 वो सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक वर्तमान में नहीं है।
मुलायम सिंह ने यह भी कहा कि अब इसमें कोई संशोधन नहीं होना है, लेकिन लिस्ट में कई नामों का होना और कई का न होना चौंकाने वाला है। खासकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पसंद और नापसंद की काफी चर्चा हो रही है। अखिलेश के 3 बेहद करीबी मंत्रियों अरविंद सिंह गोप, पवन पांडे और राम गोविंद चौधरी को टिकट नहीं दिया गया है, जबकि जिन कुछ अन्य नामों पर अखिलेश शुरू से सवाल उठाते रहे हैं उन्हें पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने की हरी झंडी दे दी गई है। इनमें कानपुर कैंट से हाल ही में घोषित उम्मीदवार अतीक अहमद और 2 दिन पहले ही पार्टी में वापसी करने वाले सीतापुर के विधायक रामपाल यादव के अलावा बर्खास्त मंत्री राजकिशोर सिंह, मंत्री गायत्री प्रजापति और नारद राय भी शामिल हैं। रामपाल यादव कुछ महीने पहले ही जब पार्टी से निकाले गए थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री से खुद की जान का खतरा तक बताया था। टिकट बंटवारे को लेकर पहले से ही ये कयास लग रहे थे कि शिवपाल और अखिलेश खेमे में इसे लेकर संग्राम की आशंका है, शायद इसीलिए टिकट घोषणा की कमान खुद मुलायम सिंह यादव ने संभाली।
चाहते तो सभी टिकट हैं, लेकिन दे पाएंगे 403, और जो बच जाएंगे उनको कहीं न कहीं सम्मानित करेंगे।
पार्टी का कोई भी नेता टिकट बंटवारे से संबंधित मुद्दे पर बातचीत को तैयार नहीं है, लेकिन जानकारों का कहना है कि जिस तरह से टिकट बंटवारे में अखिलेश की पसंद को दरकिनार किया गया है, उसे देखते हुए लगता नहीं है कि मुख्यमंत्री अखिलेश इसे स्वीकार कर लेंगे। अखिलेश यादव कई बार कह चुके हैं कि यदि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है तो उम्मीदवार भी उन्हीं की पसंद के होने चाहिए, लेकिन जिन उम्मीदवारों की सूची फिलहाल जारी हुई है उसे किसी तरह से भी अखिलेश की पसंदीदा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनमें से कई नाम ऐसे हैं जिन पर वो लगातार सवाल उठाते रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या अखिलेश इन्हीं उम्मीदवारों को जिताने के लिए कमर कसेंगे या फिर कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
नोटबंदी के बाद 500 और 1000 के पुराने नोटों को बदलने की अंतिम तारीख 30 दिसंबर है। केंद्रीय कैबिनेट ने आज एक अध्यादेश को मंजूरी दी है, जिसके मुताबिक अगर आपके पास 10 से ज्यादा पुराने रद्द नोट पाए गए तो आपको सजा हो सकती है। हालांकि अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना अभी बाकी है। लोगों के जहन में ये सवाल भी उठ रहा है कि विशेष परिस्थितियों में RBI के पास जब 31 मार्च तक पैसे जमा करने का विकल्प बाकी है तो इस अध्यादेश का मतलब आखिर क्या है। दिल्ली से विनीत खरे की रिपोर्ट।
समाचार एजेंसियों के मुताबिक जिन लोगों के पास तय तिथि के बाद भी 500 और 1000 के 10 से ज्यादा नोट मिलेंगे उन्हें सजा हो सकती है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि ये तय तिथि 30 दिसंबर होगी या फिर 31 मार्च, जब केवल RBI की कुछ ब्रांच ही पुराने नोट स्वीकार करेगी। याद रहे कि 8 नवंबर को नरेंद्र मोदी ने एक TV प्रसारण में कहा था,
ऐसे लोग जो इस समय सीमा के अंदर अर्थात 30 दिसंबर 2016 तक पुराने नोट किसी कारणवश अगर जमा नहीं कर पाए, उनको 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बदलने का एक आखिरी अवसर भी दिया जाएगा। ऐसे लोग रिजर्व बैंक के निर्धारित ऑफिस में अपनी राशि एक घोषणा पत्र यानी डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ 31 मार्च 2017 तक जमा करवा सकते हैं।
आलोचकों का आरोप है कि ताजा अध्यादेश सरकार के किए गए वायदे के विपरीत है। अध्यादेश के मुताबिक जिनके पास 10 से ज्यादा पुराने नोट मिलेंगे उन्हें जुर्माना भरना होगा और खास मामलों में 4 साल की जेल भी हो सकती है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक 1 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2017 तक पुराने नोटों को बदलने के लिए रिजर्व बैंक के खास काउंटर खुले रहेंगे, लेकिन ये आम काउंटर की तरह नहीं होंगे। अनिवार्य स्थिति में ही इन काउंटरों पर नोट बदले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उस अध्यादेश को भी मंजूरी दे दी गई जिसमें भविष्य में कोई भी इन पुराने नोटों को लेकर कानूनी दावा पेश नहीं कर पाएगा। विनीत खरे, बीबीसी दिल्ली।
बीबीसी की वर्षांत पेशकश में अब तक आपने सुना जोहरा सहगल, राजेंद्र यादव और बाबा नागार्जुन को। आज सुनिए भारत के मशहूर सितार वादक पंडित रविशंकर पर हमारी खास प्रस्तुति। भारत रत्न से सम्मानित पंडित रविशंकर ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को दुनिया भर में मशहूर किया था और दुनिया के कोने कोने में अपने हजारों प्रशंसक बनाए थे। कई साल पहले हमारी पूर्व सहयोगी रेणु अगाल ने पंडित रविशंकर का इंटरव्यू किया था, उसी पर आधारित प्रस्तुति सुनिए विनीत खरे से।
ये भारतीय शास्त्रीय संगीत को प्रसिद्धि की ऊंचाइयों पर ले जाने वाले पंडित रविशंकर के सितार से निकला संगीत है। संगीत वाद्य के रूप में सितार भारत में मध्यकाल से ही मौजूद था, लेकिन 20वीं सदी में पंडित रविशंकर और विलायत खां साहब ने इसे दुनिया भर में मशहूर कर दिया। पंडित रविशंकर का पूरा नाम रविंद्र शंकर चौधरी था और वो बनारस में एक बंगाली परिवार में साल 1920 में पैदा हुए थे। अपने 7 भाइयों में सबसे छोटे रविशंकर को संगीत का शुरुआती संस्कार अपने बड़े भाई उदय शंकर से मिला था, जो एक मशहूर नर्तक और नृत्य निर्देशक थे। दस साल की उम्र में वो उदय शंकर की मंडली के साथ पहली बार यूरोप यात्रा पर गए थे। उदय शंकर के साथ उन्होंने नृत्य और विविध भारतीय वाद्य यंत्रों को बजाने की शुरुआती तालीम हासिल की। उनके साथ विदेश यात्राओं के दौरान रविशंकर पश्चिमी शास्त्रीय संगीत, जैज और सिनेमा के संपर्क में आए और बेहद प्रभावित हुए। दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने पर पश्चिम की यात्राएं मुश्किल हो गईं, तो रविशंकर ने उस्ताद अलाउद्दीन खां के यहाँ मेहर जाकर विधिवत शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। साल 1944 में संगीत का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद वो मुंबई जाकर इप्टा के लिए म्यूजिक कंपोज करने लगे। आने वाले सालों में उन्होंने गोदान और अनुराधा जैसी फिल्मों के लिए संगीत भी दिया। साठ के दशक में पंडित रविशंकर ने एक बार फिर विदेशों में कॉन्सर्ट्स करने शुरू किए। वो ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका गए। हालांकि इन कार्यक्रमों में शुरुआत में श्रोता कम ही होते थे। इन यात्राओं में पंडित जी श्रोताओं के सामने शास्त्रीय संगीत पेश करने के साथ साथ उन्हें संगीत की बारीकियों से एक शिक्षक की तरह अवगत भी करवाते थे। बीबीसी के साथ एक खास बातचीत में उन्होंने इसका जिक्र किया था।
मुझे ऑलमोस्ट 47 ईयर्स लगा जब से मैं जाना शुरू किया विदेश में, और उनको बिल्कुल पहले पता नहीं था अपने शास्त्रीय भारतीय संगीत के बारे में, लेकिन मैं हर कोने दुनिया के हर कोने में जा जा कर बजा कर, सिर्फ बजाना नहीं, उनको समझाना थ्रू लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन, थ्रू टेलीविज़न प्रोग्राम, रेडियो प्रोग्राम, साप्ताहिक, दैनिक इंटरव्यूज़ वगैरह और मास्टर क्लासेस, सब जगह मैंने किया, तो उससे मुझे पता लगा कि काफ़ी फ़ायदा हुआ। और आपने जो पूछा कोई फ़र्क है कि नहीं श्रोता में, फ़र्क तो ज़रूर है, लेकिन ये गलत फहमी हमारे यहाँ हमेशा मैं देखता रहा है कि लोग समझते हैं कि भारत में सभी हमारे शास्त्रीय संगीत समझते हैं। ये बात गलत है। हमारे यहाँ भी चंद शहर है जैसे कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे, पूना, उधर दक्षिण में ज़्यादा हैं, वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा समझते हैं, लेकिन उत्तर भारत में हिंदुस्तानी संगीत में बस चंद शहर में हमारे अच्छे श्रोता कुछ मिलते हैं, लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा कुछ सुनने के लोग आ रहे हैं और लगता है कि शायद नंबर में पहले से बहुत ज़्यादा श्रोता बढ़ गए। भारत
विदेश यात्राओं के दौरान पंडित जी ने संयुक्त राष्ट्र की 10वीं सालगिरह पर कार्यक्रम पेश किया और 1958 में यूनेस्को के म्यूजिक फेस्टिवल पर पेरिस में भी परफॉर्म किया। विदेश की इन तमाम प्रस्तुतियों की बदौलत उनका संगीत दुनिया भर में लोकप्रिय होने लगा, उनके श्रोताओं की संख्या बढ़ने लगी। एक दौर ऐसा भी आया जब पंडित रविशंकर को सुनने जाना देश विदेश के लोगों के बीच फैशन सा बन गया था।
दोनों ही सही है, बढ़ भी गया है और आप जैसे कहें एक फैशन के लिए भी लोग काफ़ी जाते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अभी थोड़ा सा कठिन समय हम देख रहे हैं क्योंकि इतना कंपटीशन हो गया है। एकाएक अगले लास्ट 2-3 साल के अंदर ये टेलीविज़न के ज़रिए से और फिल्मों के ज़रिए से हमारे यंग जनरेशन का टेस्ट इतना ज़्यादा दूसरे तरफ चला गया, लाइट म्यूज़िक कहिए, रॉक कहिए, पॉप कहिए, फिल्मी म्यूज़िक कहिए, टेक्नो वगैरह इतना अट्रैक्टिव है उनके लिए और उनका रहन सहन भी वेस्टर्न ज़्यादा होने की वजह से हमेशा फैशन और यही सब म्यूज़िक सुनना, तो उनका इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया एक जो कि हम एक 2-3 साल पहले तक देख रहे थे कि थ्रू स्पीक में के हुआ न तो अलग अलग प्रतिष्ठान हैं, प्रोग्राम होते थे स्कूल कॉलेज में जो कि अभी भी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क मैं देख रहा हूँ।
पंडित जी ने एक अन्य विश्वविख्यात संगीतकार यहूदी मेनुहिन के साथ भी कॉन्सर्ट किया था जिससे उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिली, लेकिन पंडित जी के संगीत को उस वक्त अभूतपूर्व ख्याति मिली जब मशहूर पॉप बैंड बीटल्स के गिटार वादक जॉर्ज हैरिसन उनके शिष्य बन गए। वो पंडित रविशंकर से सितार सीखने के लिए भारत आए और कुछ समय उनके साथ रहे। दोनों ने एक साथ कई कॉन्सर्ट भी किए।
क्लासिकल अर्थ में जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा थे, बड़े बड़े हॉल सारे दुनिया में, और उस समय हमारा सहयोग था सब क्लासिकल म्यूजिशियन से, यहूदी मेनुहिन हुए, जहाँ पे रामपाल हुए, रोस्टोपोविच वगैरह, जुबिन मेहता, इन लोग के साथ मैं काफ़ी सहयोग किया, उनको सिखाया, हमारा कंपोजिशन उन लोगों ने बजाए। लेकिन जब जॉर्ज हैरिसन 66 में हमारा शागिर्द हो गया उस समय एक हलचल मच गई, दैट वाज दिस सेकंड पीरियड। और उस पीरियड में क्या हुआ, नए पीढ़ी के जितने लोग हैं, नए हिपीज लोग और सब फ्लावर चिल्ड्रन वगैरह सब लोग एकाएक हमारे ऊपर उनका दृष्टि पड़ गई, लेकिन अच्छा ही हुआ। मैं कहता हूँ कि उसमें वो जब हमारे कॉन्सर्ट में आए फिर उनका पता लगा कि हमारा संगीत में कितना शक्ति है, कितना आनंद भी है, कितना स्पिरिचुअल क्वालिटी है, जो वो ढूंढ रहे थे वो सब उनको मिला।
पंडित रविशंकर की संगीत यात्रा को सफल बनाने में उनको संगत देने वाले तबला वादकों का अहम योगदान रहा। मशहूर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता अल्लाह रखा साहब पंडित जी को तबले पर संगत दिया करते थे।
ये बात सच है कि वो हमारे एकम्पनिस्ट साहब में हमारा सहयोगिता कहिए, हमारे साथ टूर में हम ले जाते थे उनको हर जगह। सबसे ज़्यादा समय के अनुसार करीब 25 साल तो वो तो होता ही यार, वो इतना अच्छा कलाकार थे, हमारे भाई जैसे थे, और बहुत मैं उनको लेके सारा दुनिया में, लेकिन उसके पहले मैं चतुरलाल को पहले ले गया था, उसका भी बहुत नाम हुआ था, लेकिन एक दो टूर के बाद फिर हम कन्हाई दत्त बोल के एक था, उनको एक टूर में ले गया था, उनका भी बहुत नाम हुआ। तो अल्लाह रखा जी, क्योंकि हमारे साथ करीब करीब 25 साल टूर किए, उनका एक तो थे ही वो अद्भुत कलाकार, तबला वादक कितना ऊँचे दर्जे के, और मैं जितना हो सका उनको प्रोत्साहन दे के सब जगह ले जाके उनका बहुत नाम हुआ, और मैं ज़रूर मिस करता हूँ उनको।
20वीं सदी के उत्तरार्ध में पंडित रविशंकर ने सितार वादन को शोहरत की दुनिया में काफी ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। भारत में उनसे पहले सितार वादक तो कई हुए, लेकिन पंडित जी की लोकप्रियता तक शायद ही कोई पहुंच सका। शायद यही वजह थी कि उनके समकालीन और प्रख्यात सितार वादक विलायत खान साहब ने एक बार कथित तौर पर यह कह दिया था कि उनका संगीत पंडित रविशंकर से ज्यादा श्रेष्ठ है। जब पंडित जी से इसके बारे में बीबीसी ने पूछा तो उनका कहना था,
मैं तो सबसे निकृष्ट हूँ, हमसे बहुत अच्छे अच्छे सितार वादक हैं, ये जिनको ख्याल, मैं कभी ये बोलने का चेष्टा भी नहीं किया कि मैं कितना अच्छा हूँ। अभी जो कुछ मैं सीखा बाबा अलाउद्दीन खां से, वो हमारे गुरु थे, सैनिया बीनकर घराना के जो ढंग है वो सीखा, और अपने क्या कहते हैं अपना नया सोच से मैं जो कुछ प्रतिष्ठा किया सितार में, जिनको पसंद है वो करते हैं। अब ये तो फालतू बात है, कौन ये टेनिस नहीं है कि नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री, कोई भी ऐसा कहे कि मैं अच्छा नहीं बजाता हूँ तो वो ठीक है, जैसा भी मैं बजाता हूँ मेरा लोग जैसा पसंद करते हैं वही मैं बड़ा समझता हूँ।
पंडित रविशंकर ने अपने गुरु अलाउद्दीन खां साहब की बेटी अन्नपूर्णा देवी से पहली शादी की थी, लेकिन उनके जीवन में और भी महिलाएं आईं। न्यूयॉर्क में एक कॉन्सर्ट के आयोजन से जुड़ी सू जोन्स के साथ संबंध से उन्हें एक बेटी पैदा हुई, जिसे दुनिया मशहूर सिंगर और अभिनेत्री नोरा जोन्स के नाम से जानती है। नोरा ने कई ग्रामी अवार्ड जीते हैं। पंडित जी ने 80 के दशक में एक भारतीय महिला सुकन्या राजन से शादी रचाई थी। इस शादी से साल 1981 में पंडित जी को एक बेटी पैदा हुई, जिसका नाम उन्होंने अनुष्का रखा। अनुष्का शंकर विश्व प्रसिद्ध सितार वादक हैं और कई बार ग्रामी अवार्ड के लिए नामित भी हो चुकी हैं। पिता पंडित रविशंकर अनुष्का की सफलता को लेकर बेहद खुश और आशंकित भी थे।
आशा तो बहुत बड़ी है, और क्योंकि यह कारण नहीं है कि सिर्फ वो मेरा बेटी है, लेकिन सबसे बड़ा कारण है कि वो असाधारण टैलेंटेड, और इसीलिए मैं बड़ा खुश हूँ कि यह जो संयोग है कि हमारा सुपुत्री भी है और इतना टैलेंटेड है कि मैं उसको सिखा पाया। लेकिन ये विद्या जो है इसका तो कोई ख़त्म नहीं है, हमारा भारत संगीत का ये महत्व है। जो लोग समझते हैं हम सबसे बड़ा हैं, आई एम दी ग्रेटेस्ट, वो भला समझा करें, लेकिन हम तो ये समझते हैं कि इसका कोई शेष नहीं है। जितना भी करें, हमारे बाबा आखिर तक, बाबा अलाउद्दीन मेरे गुरु आखिर तक यही बात कहते थे कि हमें अभी थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन अभी लगता है कितना दूर है। वो जो गोल जिसको कहते हैं, लेकिन वही चीज़ मैं भी महसूस करता हूँ, और मेरा बेटी का अभी 19 साल उम्र है, लेकिन इतना नाम हो गया चारों तरफ और मीडिया इतना उसके पीछे पड़ गए, तो कभी कभी मुझे डर लगता है कि शायद ये क्या कहते हैं लक्ष्य न तो रास्ता से अलग ना हो जाए।
संगीत के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए पंडित रविशंकर को देश की सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया था। इससे पहले उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था, और पंडित जी ने रमन मैग्सेसे अवार्ड समेत कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते थे। लेकिन पुरस्कारों से ज्यादा खुशी उन्हें रसिकों से मिलने वाली वाहवाही में मिलती थी।
लगता तो बहुत ही अच्छा है, और मैं अपने को बहुत ही भाग्यवान समझता हूँ कि मुझे इतना अवार्ड्स मिले। लेकिन सवाल एक है कि इतने अवार्ड मिलने से क्या मैं कोई बेटर म्यूजिशियन हो गया? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मैं तो वही म्यूजिशियन हूँ। लेकिन समय के अनुसार क्रमशः लोग पहचानते हैं, लोग किसी को ज़्यादा आदर करते हैं, सम्मान देते हैं, ये तो हमेशा ऐसा ही होता है। तो हर एक पुरस्कार कहिए, अवार्ड कहिए, बहुत ही आनंद देता है। लेकिन सबसे ज़्यादा आनंद तो हमें मिलता है आम लोगों से, हमारा जो श्रोताएं हैं सारे दुनिया में, जब उनसे मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, एक जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में वाइब्रेशन, वो जब मिलती है, वो प्रेम, वो लगन, वो एप्रिसिएशन, वो सबसे बड़ा आनंददायक चीज़ है।
संगीत के पितामह माने जाने वाले पंडित रविशंकर ने 11 दिसंबर 2012 को अमेरिका के एक अस्पताल में आखिरी सांसें ली। अपने लंबे जीवन काल में पंडित रविशंकर संगीत की एक ऐसी विशाल विरासत अपने पीछे छोड़ गए हैं जो भविष्य के संगीतज्ञों और रसिकों का मार्गदर्शन करता रहेगा। विनीत खरे, बीबीसी दिल्ली।
राष्ट्रमंडल खेलों में भ्रष्टाचार के आरोप में मुकदमे का सामना कर रहे भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी आज फिर सुर्खियों में हैं। लेकिन क्यों, जानते हैं खेल समाचारों में।
बीबीसी खेल समाचारों के साथ मैं हूं वैभव दीवान। सुरेश कलमाड़ी और अभय चौटाला ने भारतीय ओलंपिक संघ IOA के आजीवन संरक्षक के पद को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। कलमाड़ी ने IOA चेयरमैन को चिट्ठी लिखकर कहा कि वो उन पर लगे आरोपों से जब तक बेदाग नहीं निकलते वो यह पद स्वीकार नहीं कर सकते। दिल्ली राष्ट्रमंडल खेल 2010 में भ्रष्टाचार के आरोपों पर जेल की हवा खा चुके सुरेश कलमाड़ी और अभय चौटाला को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का आजीवन अध्यक्ष बनाए जाने पर बवाल हो गया था। केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल ने इस पर कहा, हम सुरेश कलमाड़ी और अभय चौटाला को आजीवन अध्यक्ष बनाने से जुड़े IOA के प्रस्ताव पर हैरान है, ये पूरी तरह अस्वीकार है। हालांकि ये दोनों पोस्ट ऑनररी यानी मानद हैं, तो फिर क्यों खेल मंत्रालय के भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा की जाने वाली ये नियुक्ति आपत्ति का विषय है? इस पर बात हुई वरिष्ठ पत्रकार विजय लोकपल्ली से, जो कहते हैं,
ये दिखा के IOA ने गवर्नमेंट को एक मैसेज दे दिया कि हम नहीं परवाह करते, हमारा अपना एक क्लब है। जैसे BCCI में अगर आप देखिए, वो भी बाहर के किसी चीज को, कोई सजेशन को मानने को तैयार नहीं होते हैं। अजय माकन जो पुराने स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, पूर्व खेल मंत्री, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि इसमें कुछ एक ऑफिशियल्स टेंटेड हैं, तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि IOA के कुछ जो ऑफिशियल्स हैं वो सुधरने को तैयार नहीं है।
वहीं क्रिकेट में पाकिस्तानी ओपनिंग बल्लेबाज अजहर अली पाकिस्तान के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर दोहरा शतक लगाया हो। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के बीच मेलबर्न में दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है, जहां मैच के तीसरे दिन अजहर अली के दोहरे शतक से पाकिस्तान ने अपनी पारी 443 रनों पर घोषित की। जवाब में मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने ली मजबूत शुरुआत। दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया 2 विकेट खोकर 287 रन बना चुका था। पहली पारी में 165 रनों से पीछे ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान स्टीवन स्मिथ और बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा दिन का खेल खत्म होने तक क्रीज पर मौजूद थे। बीबीसी खेल समाचारों में इतना ही, नमस्कार।
खेल समाचार सुना रहे थे वैभव दीवान। कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आज 325 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की। इस सूची में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कई करीबी लोगों के टिकट काट दिए गए हैं। वहीं कुछ ऐसे लोगों को सूची में शामिल किया गया है जिनके नाम पर अखिलेश यादव अभी तक आपत्ति जताते रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि बचाव टीम ने काला सागर में क्रैश हुए सेना के विमान से दूसरा फ्लाइट रिकॉर्डर बरामद कर लिया है। इस दुर्घटना में 92 लोगों की मौत हो गई थी। रूस की डोपिंग निरोधी एजेंसी का कहना है कि उनकी कार्यकारी महानिदेशक एना एंटेसोल्योविच के खेल में डोपिंग पर दिए गए बयान को गलत तरीके और संदर्भ से बाहर पेश किया गया है। तुर्की का कहना है कि उसने सीरिया में संघर्ष विराम को लेकर एक सहमति तैयार कर ली है। राष्ट्रीय जनता दल ने आज बिहार में नोटबंदी के खिलाफ धरना दिया। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कहा कि देश में नोटबंदी और नस्लबंदी نسبندی سفل نہیں رہے ہیں۔ افغانستان کی راجدھانی کابل میں بم حملہ ہوا ہے۔ دیش کی آنترک منترالے کے پروکتا کا کہنا ہے کہ یہ دھماکہ سڑک کنارے رکھے گئے بم سے کیا گیا اور اس کا نشانہ ایک واہن تھا جس میں سانسد جا رہے تھے۔ بی بی سی سماچار۔
اسی کے ساتھ دن بھر کی یہ سبھا یہیں سماپت ہوتی ہے۔ آپ سے ہماری اگلی ملاقات کل صبح 6:30 بجے نمسکار بھارت میں ہوگی۔ کارکرم کے دوران اسٹوڈیو سنچالن کیا اجیت سارتھی نے۔ تو اب امریش دیویدی کو دیجیے انومتی اور دیش دنیا کی تمام خبروں کے لیے پڑھتے رہیے bbchindi.com۔ نمسکار۔